नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने संचार साथी ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता के बीच मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए ऐप को पहले से इंस्टॉल करने को अनिवार्य नहीं करने का फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहें इस ऐप को हटा सकते हैं और इस ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। अब तक 1,40,00,000 उपयोगकर्ताओं ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और प्रतिदिन धोखाधड़ी से संबंधित 2,000 घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच लोकसभा में आज संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। उन्होंने कहा कि यह ऐप सुरक्षित है और इसका उद्देश्य साइबर अपराध से लोगों को बचाना है।
संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में शुरुआत किया। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जन भागीदारी के आधार आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है।
लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सदन में यह विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य विशेष रूप से सिगरेट, सिगार, हुक्का, तंबाकू चबाने वाले तंबाकू, जर्दा और सुगंधित तंबाकू जैसे तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ाकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1984 में संशोधन करना है। इसमें देश में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रहित करने का प्रावधान है। विधेयक का उद्देश्य तंबाकू के उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर को संशोधित करना है ताकि इन उत्पादों पर करों की दर को मौजूदा स्तर पर रखा जा सके। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली में उच्च वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक के बारे में सरकार चिंतित है और प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। वे आज राज्यसभा में मणिपुर में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 अपनाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। चर्चा में भाग लेते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामी रेड्डी अल्लाह ने कहा कि वैधानिक ढांचे में केवल सतह के जल को ही नहीं बल्कि भूजल को भी शामिल किया जाना चाहिए। डीएमके के पी विल्सन ने तमिलनाडु में जल के फ्लोराइड से दूषित होने की जानकारी दी। कांग्रेस के नीरज डांगी ने मणिपुर में लोकतक झील में बढ़ते प्रदूषण स्तर का जिक्र किया। तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव ने कहा कि जल प्रदूषण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और एक सांसद के रूप में इसका हल निकालना सभी की जिम्मेदारी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रियंका चतुर्वेदी ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन और राज्य विधानसभा के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चर्चा के बाद सदन ने मणिपुर में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 से जुड़े वैधानिक प्रस्ताव को ध्वनिमत से अनुमोदित कर दिया। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आज लगभग 64% लोग कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। इससे भारत दुनिया में लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने पुराने श्रम कानूनों को नई श्रम संहिताओं में समेकित करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए श्रम कानूनों में बदलाव लाने पर बल दिया।
हमें लेबर को राइट भी देना है, हमें उसका कल्याण भी करना है और इसलिए हमने कई ऐसे कदम उठाए। सिर्फ कानूनों का मर्जर ही नहीं बल्कि श्रम शक्ति के सम्मान का मिशन के रूप में हमने रिफॉर्म को लेके आए।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। इस अभियान में 2 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद दंतेवाड़ा संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था। भारत ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 359 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 1 विकेट पर 97 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।